Hello.
Hi guys, this is your co-host Rabia Tahir.
And this is Sameem, and you're listening to another episode of Call Me In.
You guys, we have a little bit update before we get into the actual topic and the actual content. We have a little bit update that you guys might be interested to listen in. Sameem finally went in to watch Barbie.
I did, finally. Rabia could not come with me because ki alag ek life hai jo ke mujhse alag hai apparently. I begged her ki aa jao saath, but she couldn't make it. But it's okay. So, iski wajah se we won't be talking about Barbie in this episode. Iska hum ek hafta aur wait karenge jab tak Rabia dekh legi and we will talk about it. Tab tak ke liye aaj ki episode we will be talking about Zindagi Tamasha, the much awaited Pakistani feature film by Sarmat Husit and Nirmal Bano. And the other thing we will be talking about is Fairy Tail episode 1.
Season 2, okay. Episode 1. Woohoo! We cheer.
Yeah.
Also, Barbie got unbanned in Punjab. So, mujhe ki.
It did. It got unbanned right after I went and watched it in Chalo fucking cinema. Like, mujhe itna gussa hai because I'm sorry, Chalo cinema, you guys are amazing for letting me watch it. But the cinema is not that great. Theek hai? Throughout, waha par, it smelled musty. वहाँ ऐसा लग रहा था किसी ने कारपेट्स पर पानी फेंका हुआ था और वो बस वैसे ही था. लेकिन आई लव द मूवी, आई क्राइड 3 times. आई विल नॉट टॉक अबाउट इट एनी मोर. जब तक हम बात नहीं करते उसके बारे में, आई डोंट वांट टू गिव यू एनी स्पॉयलर्स, बट आई लव दैट मूवी. खैर, तो जिंदगी तमाशा.
हाँ, तो जिंदगी तमाशा आई वॉच्ड इट लास्ट नाइट विद माय मॉम एंड I really enjoyed it. Like the whole time मैं ये ढूंढ रही थी कि यार अभी कुछ होगा कि मुझे पता चले कि ये सिनेमाज में क्यों नहीं लगी. अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा कि मुझे पता चलेगा कि क्यों इन्होंने बैन की, क्या होगा. लेकिन मुझे ऐसा पूरी मूवी में कुछ मिला ही नहीं कि जिससे वो मूवी बैन हो सके. मुझे लगता है कि बोल सिनेमाज में लगी थी, बोल जो मूवी आई थी, और वो भी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल थी. लेकिन दैट मूवी मेड इन सिनेमा, तो मुझे लगता है कि ये उसी तरह टाइप की मूवी थी.
I watched it with my mother as well. Coincidence? I don't know. Meri amma relationship really comes through in feature films ke maamle mein. But I feel like when we were watching it pehle, shuru shuru mein we were a little surprised ke why did it get banned? But like after the intermission and a little bit before it as well, I did understand. Like I'm not saying the ban was understandable or valid. I'm just saying कि मुझे समझ आ गई थी कि why this certain group of people did not want it released in the cinemas or why they didn't want people to watch it. क्योंकि it art and movies and films they form लोगों के opinions, right? So they don't want कि उनका बारे में एक opinion खराब हो, which is funny because we already don't have a good opinion of them, but obviously I'm not going to say much about it. But yeah, to mujhe thodi der baad samajh aa gayi thi ki why they got this much backlash from that certain group of people. So yeah, but yeah, the banning it was such a stupid idea because it was a very nice movie. This not movie film, I'm sorry to all the film movie enthusiasts. I know what the difference is. Khair, ha.
I just think ke जिन लोगों ने उस मूवी के बारे में कमेंट की है उन, और मैं बहुत सी ट्वीट्स भी देख रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है फिल्म, इस्लाम के ख़िलाफ़ है. मुझे लगता है कि हम देखे बगैर उस चीज़ का कंक्लूजन निकाले थे कि ये, और धूप की दीवार के टाइम भी यही हुआ था, बारबी के टाइम भी यही हुआ था, जॉयलैंड के टाइम भी यही हुआ था. जब आप उस मूवी को देखते हो तो आपको पता लगता है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है. और द थिंग इज़ दैट कि अ राइटर हैव अ क्रिएटिव लाइसेंस, तो दे कैन राइट वट एवर दे वॉन्ट टू राइट एज, मतलब कि इफ़ दे आर जस्टिफाइंग इट. तो इस मूवी में अगर कोई इंसान ने कोई चीज़ गलत की है उसको गलत दिखाया है, और अगर कोई इंसान सही चीज़ कर रहा है उसको सही दिखाया है. वो किसी चीज़ को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे कि ये चीज़ सही है, ये करनी चाहिए, कि लोग रेबेलियस हो जाएं देख के. तो इसलिए मुझे नहीं समझ आती कि अगर एक चीज़ एक्चुअली अच्छी तरह जस्टिफाई और कॉन्क्लूड हो रही है तो फिर आपको थोड़ा ओपन माइंड रखना चाहिए. और दूसरी बात यह कि दिस मूवी वॉज नॉट फॉर एवरी वन. हर किसी ने देखनी भी थी. इट्स नॉट अ कमर्शियल फिल्म जो हर कोई जाके देखेगा. बहुत कम लोगों ने सिनेमा में जाके देखनी थी.
That is so true. I feel like I think the same thing happened with Barbie as well. Ke unhone hype itni badha di uske khilaf protest kar karke. I honestly don't think a lot of people from Pakistan would have watched Zindagi Tamasha had it not been banned and unbanned and like itna usko just like you said unhone hype create kar di thi ki there is something wrong in that movie. I personally did matlab I understood what they were trying to say but I don't think there was like anything wrong in that movie. The one lesson I got from it was ki I need to start being private in my life jo main utha ke utha ke har cheez Twitter pe dal deti hu. I need to stop doing that. But at the same time that person the male protagonist jiske upar the film is based on, it wasn't even his fault because he was in a private gathering with his friends.
Exactly.
And his friends asked him to dance and he didn't really want to dance pehle, but then he did. And I think I don't care if people are saying it was like a sexualized dance or anything. I think it was a man enjoying, even though agar shayad main us tarah ki setting mein hoti to main cringe kar rahi hoti ke oh my god what is that uncle doing, but he was with his friends and he was enjoying and he was dancing. Wo uska apna ek personal expression tha. The guy jo ke chul hoti hai especially lahori ladkon ko ke utha ke muh utha ke without asking him, he did not get his permission to even make a video and then he uploaded the video on internet. That was so wrong. But like but also I'm sorry, main fir se mono rant pe jaane wali hu but main bhul jaungi agar main point bhul gayi. The daughter's shame part of it, like she finds it out on YouTube and she sees kis, because to her father is an ideal, theek hai, wo naat khan hota hai aur naat padhta hai aur ye wo, and she sees him dancing like that and she's like uska sara kehte na bharam khatam ho jata hai. That was matlab you watch that scene and you understand it and you relate to it. You're like, that is what a daughter would feel in that situation.
Acha, for me the main protagonist, that guy was a nice guy. Usne kuch galat nahi kiya. Apni biwi ki khidmat karta tha.
Har
kisi se acche se baat karta tha. Khwaja Sira jo community thi, unse bhi respect se baat karta tha. Unke paas jata tha, ye karta tha. Unse badtameezi nahi karta tha. Theek hai na? To wo itna acha banda tha aur aap dekh, aur na wo kisi ko kehta tha ki tum kafir ho, ya jaise maulvi veteran kehte hain ki aap dusre ko preach kara rahe ho to religion aadmi ka aapko khud nahi pata hota. To he was a very nice decent man. Har kisi ki wo करता था. तो उस बात पे मुझे लगता है कि लोगों ने, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ये था कि द वे ही वॉज नॉट दैट, मुझे लगता है उसको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा था जब उसकी वीडियो वायरल होती है और वो सबको अश्योर करा रहा होता है कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, लेकिन जब उसने लोगों के बिहेवियर चेंज होते देखे तो मुझे लगता है दैट उसका ज़्यादा उस चीज़ पर इफेक्ट पड़ा. और वो अपनी बेटी को भी समझाता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ था तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है. तो मुझे लगता है कि इससे ये भी होता है कि वी आर मोर मीन टू पीपल, कि अगर किसी चीज़ का किसी पे इफेक्ट ना भी होना हो, हम क्या कह के उसको शर्म में डुबवा देते.
आई एग्री ऑल्सो फ्रॉम तुम्हारी इसी बात से, द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी एंड मतलब इन अ सोसाइटी, के ही लाइक यू सेड ही वाज अ गुड पर्सन, अपनी कम्युनिटी में एक अच्छा जानने वाला बंदा था. यूज टू हैंग आउट, नॉट हैंग आउट विद पीपल बट मिलन गुसार जिसको कहते हैं, अच्छा शख्स था. और जो इस तरह के सर्कल, सोशल सर्कल्स होते हैं ना, जो मोहल्लेदारी जिसको बेसिकली कहते हैं, कि क्या कहेंगे, जिस तरह यू नो व्हाट आई मीन, कि आपको किसी जगह पे सर्वाइव करने के लिए यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी वरना इट गेट्स वेरी हार्ड. तो इन द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म ही इज अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, ही इज गेटिंग हेल्प फ्रॉम एवरीवन. एंड मतलब एक जो मोहल्लादारी कल्चर होता है लाहौर के अंदर, बेसिकली वो दिखाए भी अंदरून के हुए ना, कि ही इज थ्राइविंग उस चीज के अंदर. बट फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब आपको आपकी कम्युनिटी आपको निकाल देती है ना वहां से, कि एक तरह से शन कर दिया उसको कि ओ नॉट अ गुड पर्सन, उसकी लाइफ कीप्स गेटिंग हार्डर उसकी वजह से. एंड इट्स नॉट लाइक ही इज नॉट अर्निंग एनी मोर, ही स्टिल इज अर्निंग. वो दिखाते हैं उसका एक क्या कहते हैं उसको, रियल इस्टेट, नॉट रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी का काम होता है ना उसका, लाइक वो प्रॉपर्टीज दिखाता है लोगों को, तो लाइक उसको अभी भी पीपल आर गेटिंग हाउसेज फ्रॉम हिम, उसका बिजनेस चल रहा है. बट उसकी जो बाकी की लाइफ है वो इतने बुरे तरीके से अफेक्ट हो रही है. लाइक नाथ खान ही, वो नाथ खान होता है, तो ही इज नॉट डूइंग इट फॉर मनी. यू डोंट रिसाइट नाथ फॉर मनी, यू डू इट फॉर लाइक अपने दिल की खुशी से आप करते हो. तो बट दैट इज समथिंग दैट गिव्स हिम हैप्पीनेस, और वो चीज़ उससे ली जा रही है. उससे एक वो एक सीन था, वो ओ माई गॉड दैट सीन, जब वो हलवा बनाता है बारा रबीउल अव्वल को,
हाँ,
और वो इतनी खुशी से बनाते हैं कि मैं न्याज बांटूंगा, ठीक है. एंड दैट इज सच एन इनोसेंट जेस्चर. वो जिन जिन गेट्स पे जाता है बच्चों को बांटने की कोशिश करता है, उसकी माँ कहती है कि वो तुम्हें घर पे खाना नहीं मिलता और समथिंग लाइक दैट, और ही इज सो डिसअपॉइंटेड के, और वो बस के उससे न्याज नहीं ले रहे, हालांकि उसने पूरी जिंदगी इस मोहल्ले में गुजारी है, वो सब उसके जानने वाले. और वहाँ पे वो ख्वाजा सरा एक बैठा होता है, और कहने को वो जो ख्वाजा सरा की फैमिली होती है दे आर कंसिडर्ड लेसर दैन इन दैट कम्युनिटी, राइट, के लोग उनको अच्छी नज़र से नहीं देखते. एक वो शादी पे भी जब वो सीन आते हैं उसके अंदर भी वो कुछ उसके बारे में बात करते, मतलब दे आर अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी बट देर स्टिल द सोशल स्टिग्माइजेशन एंड एवरीथिंग. एंड एक सटल सी वो चीज़ दिखाई हुई है कि ही दे डिडंट टेक इट फ्रॉम हिम, बट द ख्वाजा सरा पर्सन ही गेट्स अप एंड ही हेल्प्स हिम एंड इज लाइक मुझे दे दो मैं बांट देता
हूं,
एंड देन दे टेक इट फ्रॉम देम. सो मुझे वो भी चीज़ इतनी, मतलब इतने सटल किस्म के पॉइंट्स हैं ना इस मूवी के अंदर, देर नॉट इवन प्रीची बट आपको आपकी आंखें खोलने वाले कि आपकी सोसाइटी का आईना है आपके सामने कि ये ऐसे हो.
जैसे तुमने कहा कि देर इज सटल हिंट्स थ्रू आउट द मूवी. जो पहला सीन होता है जिसमें वो बिल्कुल नात रिकॉर्ड करते हैं और फिर जाके वो एक DVD लेते हैं, मुझे वो भी बहुत जो है ना हिट किया, क्योंकि वी ऑल हैव दैट साइड टू अस, राइट. बहुत नॉर्मल है ये एक इंसान के लिए. और दूसरा मुझे ना इस चीज़ से ये भी हुआ कि जैसे वो मेंशन करते हैं अपने दोस्तों में कि मेरे बाबा बहुत स्ट्रिक्ट थे, मैं जब एक बार मैं डांस कर रहा था तो मेरे बाबा आए घर और उन्होंने मुझे मारा, ठीक है. तो सबको पता लगता है कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग कितना बच्चे पे इफ़ेक्ट करती है, कि अगर उसका बाप उसी वक्त उसको आराम से समझाता या फिर उसको देखता और उसको इतना स्ट्रिक्टनेस ना देता तो शायद ही हैड अ बेटर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. लेकिन आप उस बंदे को समझा नहीं रहे, इवन जो भी उसके साथ लोग होते हैं वो उससे बिल्कुल कतअ ताल्लुक ही काट देते हैं, वो उसको बात नहीं करते, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते, और इस वजह से वो बंदा एक्सट्रीम पे चला जाता है कि एंड पे उसके पास रह ही वो एंटरटेनमेंट, वो गाना या फिर वो सब रह जाते हैं. और एंड पे इसलिए उसी मूव वो सीन पे वो एंड होता है कि वो देख रहे, क्योंकि उसके पास और कुछ रह ही नहीं जाता, उससे कोई बात ही नहीं करना चाहता, उससे कोई कॉन्वर्सेशन या डिस्कशन ही नहीं करना चाहता इस बारे में.
पता है मेरा पॉइंट ऑन दिस वाज के हम इस तरह से ना, अच्छा जिस उन्होंने बात की ना कि हर किसी के एवरीवन हैज देयर गिल्टी प्लेजर्स एंड व्हाटएवर, आई थिंक दैट इज द पॉइंट ऑफ लाइफ. क्योंकि आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट रिलीजन ज्यादा, क्योंकि थोड़ी आई डोंट वॉन्ट टू गेट लिंच्ड, बट या बट फिर भी आई जस्ट वॉन्ट टू मेक दिस पॉइंट के आई पर्सनली फील लाइक दैट इज द पॉइंट के यू हैव टू कीप अ बैलेंस कहीं पर. अगर आप हर चीज़ ख़त्म कर दोगे शंत कता तालुकी फ्रॉम एवरी थिंग, देन यू आर नॉट लिविंग लाइफ. एंड आई फील लाइक दिस इज़ हाउ यू मेक पीपल रन अवे फ्रॉम रिलीजन, बिकॉज यू कीप सेइंग ये भी गलत है, वो भी गलत है, ये भी गलत है, सब गलत है, यू आर नॉट अलाउड टू लिव योर लाइफ, और लोग इस वजह से रिलीजन से भागते हैं. इस तरह आप लोगों को बड़ी एक डिप्रेसिंग सी जगह पर अक्सर भेज देते हो. या तो इट्स लाइक इट्स फाइन टू बी, एंड आई एम नॉट सेइंग सम पीपल डू फाइंड पीस एंड लाइक लाइफ इन रिलीजन विच इज़ फाइन, बट मी पर्सनली आई थिंक के पीपल शुड बी एबल टू एन्जॉय लाइफ. और पता है दिस ऑल्सो क्रिएट्स सम लेवल ऑफ गिल्ट कि अगर आपने कुछ ज़्यादा ही, जिस तरह डू यू रिमेंबर वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन वंस कि आप जो कोट्स हराम चीज़ें या थिंग्स यू आर नॉट सपोज टू डू, आप वो चीज़ें जब बहुत ज़्यादा करने लग जाते हो, दिस इज़ वेरी कॉमन एस्पेशली इन वुमेन. दे स्टार्ट फीलिंग लाइक दे आर नॉट वर्दी ऑफ बी ऑफ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अल्लाह और प्रेइंग फॉर देमसेल्व्स. लाइक वो इतना ज़्यादा गिल्ट क्रिएट करता है कि आपको लगता है आपके अंदर से कनेक्शन ही ख़त्म हो गया अल्लाह ताला के साथ, विच I think is so wrong. Again, मैं बार बार कहती हूँ कि मैं रिलीजन में बात नहीं करना चाहती, बट दिस आई फील लाइक दिस वॉज अनदर पॉइंट फिल्म वॉज मेकिंग कि आप दैट पर्सन इज जेन्युइनली ही लाइक्स नाथ खानी एंड बट ही ऑल्सो हैज़ अ लाइफ एंड ही ऑल्सो लाइक्स मूवीज एंड मे बी सॉन्ग्स एंड एवरी थिंग. और तब तक इट्स ठीक है, इट्स फाइन. एंड
ऑल्सो इज नॉट एनी हार्म टू द कम्युनिटी.
एग्जैक्टली, इट इज नॉट कॉजिंग एनी हार्म टू एनी वन. डू यू रिमेंबर दैट सीन जब उसका दामाद अपोलॉजी के लिए गया था, क्या आप अपोलोजाइज कर लें, सॉरी करने में? तो ठीक है, मतलब इफ यू, आपको अगर नजर आ रहा है कि पूरी कम्युनिटी कुछ ज्यादा ही हर्ट हो गई है, तो ठीक है सॉरी करने में, वो बंदा भी मान जाता है. हाँ, ही मेक्स सम अपोलोजाइज एंड ही इज फाइन विद इट, के एज लॉन्ग एज ही इज मेंडिंग हिज रिलेशनशिप विद द डॉटर एंड द कम्युनिटी. बट व्हेन द काजी साहब goes overboard with it and he keeps इतने condescending तरीके से कि तुम्हारे अंदर कोई शर्म है, तुमने क्या किया है, तुम्हारे अंदर कोई शर्म है, and he realizes that this person who has no morals of his own, he is trying to lecture me for something which is not even, you know, मतलब I didn't cause anyone any harm by that dance. So that was another scene I really liked, but can't really talk about.
और मुझे वो भी मैसेज अच्छा लगा कि इवन अगर वो उसने कोई चीज़ गलती की और वो अपोलोजाइज करना चाहता है तो वो उसको सीधे मुँह अपोलोजाइज नहीं करने दे रहे, वो कह रहे हैं कि टर्न करके दरूद शरीफ पढ़ें, बादशाही मस्जिद नज़र आए, कि सोसाइटी इतनी बनावटी है कि वो ये चीज़ें कंसिडर करेगी.
आई एग्री. और वो वाली बनावटी वाली बात वही ना, और you have to apologize un qazi sahab ki tareeke se, because he is the one jinke under mazhab aate hain, and he knows it, he is the thekedar of religion and he knows
what actually caused to the community, the person who is wo usko bata raha hai ki tumhe kya karna hai. Mujhe uska jo wo beti ke sath, I was waiting कि यार अब मे बी दे हैव अ कम, मतलब कि दे हैव अ टॉक, शायद इनका फिर से जो है वो, क्योंकि आई जेन्युइनली वॉन्टेड टू सी द फादर एंड द डॉक्टर डॉटर रिकनसाइलिंग, और वो बात करें और वो फिर से सही हो जाए. लेकिन इट डिड नॉट हैपन. और द लास्ट सीन वेयर शी कम्स और वो अपने माँ के कपड़े वापस करती है, और फिर वो कहती है, क्योंकि वो इतनी हीटेड हो जाती है कॉन्वर्सेशन, क्योंकि वो देखती है कि मेरा बाप फिल्म देख रहा था और वहाँ मेरी माँ मर रही थी, तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हो गया है. और उसका जो अब्बू है वो भी, ही इज़ ऑल्सो डन कि मुझे कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, कोई मुझे मुँह ही नहीं लगा रहा. तो वो उसको बात कह के चली जाती है, और उसके अब्बू मतलब कि ही इज़ ऑल अलोन, और मतलब इट मेक्स यू वंडर कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि आई रियली वॉन्टेड द फादर एंड डॉटर टू हैव देयर मोमेंट. लेकिन नॉट एवरी एंडिंग इतनी सीधी होती है, इट वाज अ मोर कॉम्प्लेक्स एंडिंग, और ऐसी एंडिंग
दैट वाज सो रियलिस्टिक के देयर रिलेशनशिप जस्ट केप्ट गेटिंग वर्स, इवन व्हेन ही ट्राइज टू टॉक टू हर के बेटा देखो ऐसे होते, मतलब यू सी द ह्यूमननेस इन दोज कैरेक्टर्स के दे आर, आई कुड नॉट रिलेट बट आई कुड अंडरस्टैंड देम, आई कुड सी दैट हैपनिंग अराउंड मी समवेयर के अच्छा, because I feel like that is how father-daughter relationships are, because aapne puri zindagi unko aise pedestal ke upar chadhaya hota hai, and then they do one thing and it's just pani pani on everything, and then it takes you a long time to realize that your father or your parents are also human beings capable of making mistakes or having a life of their own, jo ke zaruri nahi hai ki unka har action aapke liye ek personal attack ho, it's just their life.
मुझे अच्छे नोट पे ये लगा कि हाउ गुड द सन इन लॉ इज, कि वो बहुत कंसिडरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, ही इज एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन द फादर एंड द डॉटर.
आई वांट टू टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन हिम एंड हिज वाइफ एज वेल, बिकॉज़ दैट वाज अ वेरी स्वीट. एक तो उसके अंदर नजर आता है कि इट्स अ पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप, एंड यू सी अ वर्किंग क्लास कपल who have spent their entire life. पता है मुझे पहले सीन से जब वो घर आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तिक्का लाया हूँ, अभी कहती है मैंने इतनी रात को तिक्का खा के क्या करना है, बट एंड फिर कुछ 15-20 मिनट बाद ही उनकी किसी बात पे बहस हो जाती है. वो सब सच अ रियल कपल, बट दैट दे हैड सो मच लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. वो उसकी जब उसके नाच प्रैक्टिस करा रही होती है, वो इतना एक क्यूट सॉफ्ट मोमेंट था, और वो बादाम छील रही होती है, एंड देन ही समटाइम्स ही इज कॉम्बिंग हर हेयर, एंड यू सी दैट दिस पर्सन जेन्युइनली केयर्स फॉर हिज वाइफ, एंड देयर इज नो वे दैट ही कुड एवर बी रिस्पांसिबल फॉर हर डेथ. राइट,
वो उसका स्वेटर पहन के बैठा होता है एंड सीन पे, वो बहुत,
और उसकी टोपी, और उसकी टोपी, और मुझे मुझे इस वजह से भी वो सीन इतना दुखी लगा था व्हेन शी कीप्स ब्लेमिंग हिज हर फादर फॉर विच, लाइक आई अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग टू डू, बट दिस दिस कॉमेंट माई मदर मेड कि ये बहुत नेचुरल सी बात है कि आपकी अम्मी की डेथ होती है और ऐसे ही इल्ज़ाम बाप पर आ जाता
हाँ
है. एंड आई डोंट नो व्हाई शी सेड इट, बट द वे शी सेड इट आई फेल लाइक शी एक्चुअली बिलीव्ड इट, क्योंकि उनका कसूर ना भी हो तो कभी कभी उन पर आ जाता है. बाकी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड एवरीथिंग और पेट्रियार्की एसाइड, बट दैट इज़ अ ट्रू थिंग कि आई मतलब उसकी एनिमोसिटी विद हर फादर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि शी स्टार्टेड ब्लेमिंग हिम फॉर समथिंग दैट वाज़न्ट इवन हिज
जब
फॉल्ट.
वो सीन आ रहा था ना तो मैं बोली जा रही यार टीवी तो बंद कर लो, यार टीवी तो ऑफ कर लो. तो लेकिन लगता है कि इवन हिम वॉचिंग दैट शो अगेन, वो उसका ना कंफर्ट एक चीज़ बन गई थी. और इवन द सॉन्ग, ही हैड दैट रिलेशनशिप विद हिज वाइफ, लेकिन वो अपनी वाइफ के सामने भी बता नहीं रहा था कि मुझे ऐसा लोग ट्रीट कर रहे हैं या मेरे साथ ये हो. और वो जो गाना है वो पूरी उस फिल्म को बहुत अच्छे से समराइज करता है. तो इस वजह से जब उसकी, जिस दिन वो आता है मिलाद से वापस और वो अपनी बीवी को बता रहा होता है और दे आर हैविंग दिस वेरी इमोशनल कॉन्वर्सेशन जिनमें दोनों को पता है कि वो एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं लेकिन वो नहीं बता रहे, तो वो आके वो फिल्म इसलिए देख रहा होता है क्योंकि वो एक चीज़ है जिससे उसको कम्फर्ट मिलता है, या वो गाना है उसको उस चीज़ से. और एंड पे आके उससे कोई बात करने के लिए रह ही नहीं गया क्योंकि वो किससे क्या बात करे. और जैसे वो डीवीडी वाला था वो उसको बिल्कुल ही एक और एक्सट्रीम पे ले गया था.
द मिलाद सीन, मेरे वहाँ एक्चुअल गूज बम्स आई हैड ड्यूरिंग दैट सीन के
दैट सीन वॉज ऑल्सो वेरी वेल शॉट. जब वो वापस जा रहा होता है ना पूरा बहुत अच्छा होता है.
इट वॉज वेरी वेल शॉट. नॉट द म्यूजिक बट इट वॉज वेरी वेल एडिटेड एज
हाँ
वेल, एंड द एक्टर्स वर रियली नाइस बिकॉज यू कुड टेल फ्रॉम देयर एक्सप्रेशन. लाइक मुझे मतलब मेरा एक्चुअली सांस रुक गया था उस सीन के अंदर कि ओ माई गॉड.
जिस सीन में वो जलेबी रहा होता है अपनी बीवी के लिए क्योंकि उसे तो वो
हाँ
मिला नहीं तबरक, तो मुझे कुछ ना कुछ तो बीवी को जाके देना है. तो मुझे लगता है बहुत सटल, बहुत डिटेलिंग थी. और मुझे लगता है एंड तक उन्होंने किसी चीज़ को ग्लोरीफाई नहीं किया. आपको सारी जो चीज़ें नेगेटिव थी वो आपको पता लग रही है चीज़ गलत है, जो चीज़ पॉजिटिव थी आपको पता लग रही है चीज़ पॉजिटिव है. तो अगर कोई भी करेक्टर को आप किसी का सही गलत सारे शेड्स दिखा रहे हो और प्रॉपरली दिखा रहे हो, मुझे लगता है कि लोग ना आके ये इशू बनाते हैं कि जब तेरे बिन ड्रामा था उसमें कोई ऐसी चीज़ दिखाई तब आप क्यों नहीं देते राइटर को क्रिएटिव लाइसेंस, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ दिखा रही है जो डोमेस्टिक अब्यूज़ है या मैरिटल रेप है, वो ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी को डैमेज कर रही है और आप उसको ग्लोरीफाई करके दिखा रहे हो. यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ग्लोरीफाई नहीं की, यहाँ पे स्टिल नो वन वॉन्ट्स, मतलब कि वो ये नहीं कह रहे कि हाँ किया करें ऐसा डांस और लगाया करें, वो इस चीज़ को नहीं
आई
ग्लोरीफाई कर
एग्री.
रहे.
वो बस एक सोसाइटी में जो चीज हो रही है जो कि इट इज अ नॉर्मल.
हाँ वो ये दिखा रहे पर्सन गोज थ्रू, इवन अगर आप अंदर से अच्छे हो बहुत अच्छे इंसान हो लेकिन आपको फिर भी जो है वो सुनना
जस्ट जस्ट
पड़ता
द
है.
डिपिक्शन ऑफ सोसाइटी एज इट इज. देयर जो देयर
एग्जैक्टली
वर सटल हिंट्स ऑफ लाइक आई यू कुड टेल कि देयर ट्राइंग टू मेक अ कमेंट हियर एंड देयर, बट देयर वाज नो ग्लोरिफिकेशन. आई एग्री. खैर, बट आई थिंक हमारा टाइम फॉर दिस सेगमेंट इज अप. हम बहुत ज्यादा टाइम
या
ओवरबोर्ड जा चुके हैं. 30 मिनट्स हो चुके हैं. जस्ट बाय द वे, यू विल हैव टू एडिट दिस.
ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फेरी टेल्स जिसकी एपिसोड अभी मैंने 10 मिनट पहले पूरी की है. तो आई लव्ड इट सो मच. मुझे लग रहा था कि सीजन 2 आ रहा है तो मुझे लग रहा था कि वो सिर्फ सीजन 2 इसीलिए बना रहे क्योंकि सीजन 1 इतना पॉपुलर हो गया और उन्होंने इमरजेंसी में कहा राइटर को कि नहीं आप प्लॉट लिखें जल्दी से करें, हमें सीजन 2 करना है क्योंकि ये इतना पॉपुलर हो गया है. और फिर उन्होंने टाइम भी 2 महीने का दिया. आई लव द फैक्ट कि उन्होंने रमज़ान का वेट नहीं किया, उन्होंने फ़ौरन ही सीजन 2 स्टार्ट कर दिया. लेकिन ऐसा लग रहा था इतनी इमरजेंसी में उन्होंने लिखवाया तो मैंने कहा कहीं बस वो ओवर डू ना कर दें, लेकिन दे केम थ्रू. बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, वो वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग और इट वॉज़ वेरी फन एंड फ्रेश और आपको इंट्रीग्ड भी रखता है, तो इट वॉज़
I think
एवरीथिंग.
it was everything we were expecting from it, but at the same time, I know, I don't think anyone has said it अभी तक. ये शायद मैंने expectations ज़्यादा लगाई हुई थी, but I was a little disappointed कुछ चीज़ों के मामले में. I agree बाकी सारी चीज़ों से. It was really fresh. It was something we expect of fairy tale. Okay, it makes you happy and it great chemistry, great everything and
Jean Clark characters and everything. But do teen cheese, I feel like the pehle we should talk about the plus points. What was your favorite scene? Do episodes, by the way, which is such a stupid decision. Like me, other time meri light gayi thi aur main wait kar rahi thi.
Other time meri light gayi thi jab tumhari aayi foreign mein chali gayi.
I was so mad. और मैंने अभी लगा एक तो मैंने पहले डिसाइड किया था कि आई एम नॉट गोइंग टू वॉच इट ऑन टीवी तब तक आई डिडंट नो कि लाइव स्ट्रीम्स भी आती हैं और मैं लाइव स्ट्रीम देखना भी नहीं चाहती थी मैंने कहा था अगर मैंने लाइव देखना है तो मैं टीवी पे देख लेती हूँ बट लाइट चली गई एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग पास्ता और चलो दैट वाज अ गुड डिसीजन एटलीस्ट मैंने खाते खाते देखा बट हाँ बट आई फील लाइक इट्स अ स्टूपिड डिसीजन एक हफ्ते में लाइक एक दिन में दो एपिसोड्स दे कैन दे कुड व्हाट दे कुड हैव डन वाज कि एक हफ्ते में दो एपिसोड्स कर लेते लाइक एक सैटरडे है एक किसी और दिन है तो बिकॉज पहले बहुत रेगुलर डेली एपिसोड्स थे पर एट द सेम टाइम रमज़ान में तो सबकी रूटीन वैसी होती है आजकल सब इतना फ्री नहीं है वीकेंड्स पर एटलीस्ट वी आर फ्री हम बैठे देख सकते हैं मिक्स फीलिंग्स अबाउट दैट बट या व्हाट वाज योर फेवरेट सीन फ्रॉम द एपिसोड
I think it has to be क्योंकि मैंने अभी अभी वो देखे the star plus scene it was so funny और ना मैं ना पहले उसके ना क्योंकि मुझे पता चल गया था it's happening क्योंकि everyone started posting a screenshot on Twitter और मैंने कहा कि यार cringe हो जाने पता नहीं क्या करेंगे लेकिन it was so well done it was so funny वो start होता है और उसमें वो हमजा का जो करते हैं वो इतना funny था मुझे लगता है निगो आंटी ने वो जो सास का कैरेक्टर किया उसने बहुत अच्छी एक्टिंग मतलब कि शी लुक्ड लाइक सास और आईटीवी की और मुझे लगता है कि सहर बहुत बहुत लग रही थी वो आईटीवी कैसे उसकी आंखें लाल हुई हुई हैं और वो चुप खड़ी है क्योंकि आईटीवी की बहू कुछ नहीं बोलती मतलब वो चुप खड़ी रहती है कि ये मेरा बंदा ही कुछ बोले वो चुप करके खड़ी है और उसको देखी जा रही है वो तो मुझे लगता है कि वो तो लग ही रही थी तो वो सो फनी वो सो फनी वो कहते हैं कि माँ आप आंखें खोले मैं उसे नहीं करूँगी और उसकी आंखें फौरन खुल जाती हैं
आई नो आई फील लाइक सहर का ऑल हर एक्सपीरियंस फ्रॉम समवन सेड दिस ऑन ट्विटर एज़ वेल कि सहर और हमजा दोनों का एक्सपीरियंस फ्रॉम जियो टीवी केम थ्रू बिकॉज़ उन्होंने फुल दे गिव प्रॉपर सहर लेकिन आई लाइक दैट सीन एज़ वेल इट वाज हिलेरियस इट वाज सो इनसीरियस The directors and the makers, they just decided ke ye humne scene lana hai. And it was so funny, it was genuinely so funny. Ki matlab nigo aunty ki imagination. This, I feel like it was a parallel from pichle season 1 mein there was another nigo aunty imagination scene where she imagines them getting married or something. And this was so funny, you expect uh-huh. something like this from nigo aunty. Uh-huh. Apart from that, the start, like how they started the show was also nice. Like unhone ek typical flashback वो नहीं दिया flashback नहीं क्या कहते उसको recap नहीं दिया the way they recapped it was so creative uh-huh. like something very out of the box I loved it कि oh they're uh-huh. inside a cinema uh-huh. and then they get out and Umeed is like ये एक movie नहीं थी ये हमारी यादें थी and it was so sweet sweet scene
उस scene में जब वो दिखा रहे होते हैं उसका scene फरजाद का जिसमें वो फ्लांग रहा होता है छत और उसका expression उस time पे इतने मजे के होते हैं I really love that. Or I love the cinema thing. क्योंकि उस पर सारे अपने अपने में लगे हुए हैं और सारे react कर रहे हैं बस it was so funny. उसके बाद मुझे लगता है कि उन दोनों के ऑफिस के सीन्स भी कुछ बहुत बहुत अच्छे थे हालांकि मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली लगता है कि शायद जब कन्फेशन हो जाए तो उस तरह स्टोरी रहती नहीं है लेकिन आप there's still tension between them and you hmm. love that. There's still that awkwardness that makes you intrigued और मतलब कि he's so gentle or that makes me crazy that makes me insane aur pata mujhe lagta hai ki mujhe nahi pata ki maine last kab aisa dekha tha kisi pakistani drama mein lekin the way we obsessed over korean fictional man ke specially romcom mein ke yaar wo aisa hai farjad wo wali touch dete hai which is so nice kyunki maine kisi actor mein ऐसा कुछ नहीं देखा मतलब कि द वे इसलिए मुझे लगता है एवरीवन कॉल्स हिम बेबी गर्ल क्योंकि सब पहले कोरियन मेन को बेबी गर्ल कहते थे क्योंकि ही ब्रिंग्स दैट वाइब व्हिच इज वेरी नाइस
ही इज सो बेबी गर्ल बॉय
एंड ही नोस दैट
ही डज मतलब पूरा ही गिव्स मतलब जब से उसको पता लगा ना वी कॉल हिम बेबी गर्ल ही ऊपर सर पर डर गया वो बट एनीवेयर व्हाट यू सेड अबाउट अच्छा विद ऑफिस सीन्स I think I've said it before. I don't really like office romance. I'm not a big fan of office romance.
Same, I also don't like it. लेकिन मुझे इतनी सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट नहीं हुई, मुझे बाकी ऑफिस रोमांस में तो बहुत ज्यादा होती
है. हाँ, इट वाज नाइस बिकॉज़ एक तो पहले से आई थिंक क्योंकि उन्होंने शुरू इस तरह नहीं किया कि ओ शी इज उसकी सेक्रेटरी एंड देयर फाइटिंग एंड मतलब अचानक से मतलब डायनामिक्स पहले से डिसाइडेड है कि सबको पता है उसकी फियांसे है, शी इज देयर टू वर्क. आई एम लाइक ठीक है आई गेट इट. ऊपर से सेंस ऑफ सिली गोफी ड्रामा आई देयर नॉट देयर never keep it that serious. Kuch kuch baatein beech mein hoti hain. But apart from that, I like that. I liked jo office wale scenes the. But ek cheez jo mujhe achhi nahi lagi from it is Mehak wala dynamic. Theek hai, Mehak aur Umeed ka dynamic. Like, I feel like they're trying too hard to make a vampish character. They're trying it with Nigo and then they're trying it with Mehak. I don't think uski zarurat hai. Wo zabardasti beech mein ghusa rahe hai since I feel like because unhone itna rush kiya season 2 ko, they needed something and they just rushed it in. Nigo ka I understand because pichle season ke end se she was a little iffy about it, which I don't understand. Wo pehle se bhai usne shaadi karani thi apne bete ke, keh rahe shaadi karani hai to kara do, tumhe kya masla hai. But like phir mujhe lagta hai ke Nigo ka I do understand thoda sa because wo pichle season ki hi extension hai. But Mehak wala I feel like they should just get over with it. It's not. Mujhe shuru wala scene bahut funny laga tha jab Seher usko kehti hai ki dur rehke baat karo. So it was such a funny scene. I love Seher so much. Love Seher the actress and I love Umeed the character. I love both of them. They have my entire heart. But I feel like it should, that thing should end there, that plot, subplot. I don't want it. Aage jaake mujhe, because humne season 1 ke andar itni achhi female friendships or female dynamics dekhe hain with Haya, Haya and Maryam and Umeed, ke I don't think ye, it won't do the drama justice jis tarah ka wo deserve karta. So yeah, I'm not really excited about that part of it.
मुझे भी मतलब आई वॉज नॉट रियली बिग ऑन दैट कि वो चाहने शायद कि जेलसी ट्रूप हो, लेकिन मुझे लगता है व्हेन दे बोथ आर सो इन लव विद ईच अदर तो बीच में एक तीसरे बंदे को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है. और स्पेशली जब आप पिछले सीजन में वो दिखा चुके हैं विद फरजाद फियांसे जो थी और वो सब कुछ था, तो और मुझे लगता है उसके बगैर भी शो वुड बी इक्वली इंटरेस्टेड interesting. तो आई मतलब मुझे नहीं, लेकिन आई लव द वे द बॉस गर्ल उम्मीद इज और वो हमेशा उसको शट अप कॉल दे देती थी. और मुझे जेन्युइनली मुझे लगता है कि सहर इज सो गुड. आई लव हाउ शी इज लाइक अ बॉस गर्ल
बट आल्सो
एवरीवन एल्स. लेकिन जब भी लेकिन जब फरजाद सामने होता है तो वो she talks in pout और वो मतलब थोड़ी बहुत हो जाती है. And he talks with her so gently और वो जैसे उसको अपने ऑफिस लेके जाते हैं. और आई वॉज गोइंग इनसेन, मेरे साथ मेरे अब्बा बैठे थे लेकिन मुझे मैं ब्लश किए जा रही थी पूरे उनके ऑफिस सीन्स में. क्योंकि और आई लव क्योंकि मैं इनके ऑफ स्क्रीन इंटरव्यूज बहुत आगे हुए और मैं देख रही होती हूँ. आई थिंक दे रियली लाइक ट्रांसेंड जो इनका जो ऑफ स्क्रीन डायनामिक है उसको ऑन स्क्रीन, क्योंकि वो ऑफ स्क्रीन भी उतने ही इंटरेस्टिंग है दोनों और उनका बैंटर बहुत मजे का है. तो और दे आर सो गॉर्जियस. मतलब आप कुछ मतलब कि सम पीपल ट्राई सो हार्ड फॉर केमिस्ट्री, लेकिन वो उनका डाइनिंग सीन था जिसमें वो दोनों बस एक दूसरे के साथ बैठे हैं, जो सेकंड सीन इतने प्यारे लग रहे हैं साथ एक साथ बैठे हुए. मतलब कुछ कर भी नहीं रहे, देख भी नहीं रहे एक दूसरे की तरफ, कुछ भी नहीं है, लेकिन यू कैन दे आर जस्ट इन वन फ्रेम और यू कैन फील केमिस्ट्री.
दे लुक सो गुड टुगेदर. आई 100% एग्री. मुझे नहीं लगता मैंने आखिरी दफा मैंने कब पाकिस्तानी ड्रामे में इतनी अच्छी गई. आई मीन I can say a name, लेकिन वो तो हर दिल तोड़ देगा तो I won't say it. But yeah.
नहीं, you can say it. Okay.
I feel Sajal and Mahak were somewhere in the same category, but I still like these two more. I have a really soft corner for Umeed and Farzad. But yeah. Also, the dining table scene was such a domestic scene. Ke he was offering her roti. Aapko roti chahiye? Ye le roti. He's always so attentive around her. Umeed ko kya chahiye? Umeed. And uske baad jab wo aake full monologue dete hai ki aapki meri life mein ye sab missing tha. Abu Jan ka pyar and all of that. Aur spoilers ko jo damad treatment, that is so realistic first of all. In at least in my family, ye sab hota damadon ke saath, log unko sar par chadhate hain itna zyada unko sar. Oh my god. And hope meri family mein se koi ye sune na. But so that like, and it was such a sweet DC Justin care. Usko sar pe chadha hai.
Also, I don't know unhone kitna time jump kiya. Do like I don't think they mention it in the episode, but I kind of want to know ki hum kitne saal aage chale gaye, kyunki Umeer is now graduated.
Huh.
And she joined his office because she graduated. And uski wardrobe and fashion se hame pata lag raha hai. Someone pointed out ki she's not wearing sneakers anymore. Mm. She's wearing heels and like uski puri kaafi wardrobe change hui hai. Uska makeup kaafi change hua hai. Uska childishness mein thodi kami aayi hai. Also, uska dynamic with Pasha Saab has changed a lot. We see it in the recap scene where Pasha Saab is coming to this realization that haan, shayad na bachcha ko zyada daant deta ho. Was so sweet. Like, not sweet, I mean, that was the bare minimum. I wanted an apology scene from him, but at least he realized it. Theek hai, fine. And we see ke Halal Pasha ka thoda sa uski spine bhi seedhi hui hai. And also, he starts helping his wife out in the kitchen because she's always crying about nobody helping her. That was okay, cute, sweet. I love Hilal Pasha. I love the scene jab wo do kehte ke Umeed office join kar gaya, hum dua karenge kal Umeed join kare ke upar so Farzad ka office band ho jayega. That was so funny. I love his comic timing.
I loved ki usko naukri offer hui hai aur sabse pehli Umeed ne baat ki hai ki main itni jaldi subah uthungi kaise.
That was the first thing that goes through my head as well.
Yeah. जो वो समीर और एना के कैरेक्टर में उसके कैरेक्टर का नाम भूल गया लेकिन उनकी मंगनी होती है और मैं कहती हूँ यार सामने खाना पड़ा है सामने उनकी प्लेटों में बिरयानी पड़ी है और अभी वही रिंग एक्सचेंज जो है उसकी सेरेमनी मतलब प्लेटें तो हटा लो लेकिन वो भी कहती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी व्हिच इज नाइस
अच्छा दिस आई डोंट अंडरस्टैंड उनका किस किस्म का टाइम्स मुझे टाइम स्केल सच में नहीं समझ आ रहा है आई वांट टू अंडरस्टैंड ठीक है कि अपेरेंटली अगर उम्मीद ने ग्रेजुएट भी कर लिया तो कम से कम एक डेढ़ साल तो गुजर गया है राइट क्योंकि इफ शी वाज 20 इन द प्रीवियस सीजन ठीक है व्हिच ऑनेस्टली मैं आई रिफ्यूज टू एक्नॉलेज दैट फैक्ट मेरे दिमाग के अंदर शी वाज ओल्डर देन दैट बिकॉज आई डोंट लाइक द एज गैप बट इफ शी वाज 20 इन द प्रीवियस season agar unhone likha is tarah tha aur I don't think anyone can graduate before they're 22 at least right mujhe to lagta hai 23 tak log jate hain but at least 22 se pehle to nahi aap graduate kar sakte
nahi ho sakte exactly
so if she has graduated now and now she is 22 and acha uska Sameer ka understand beech mein he was in a university and he changed career so wo fine arts mein ab ja raha hai But Haya ne abhi medical ka exam diya. So like, is she 18 years old? Like she just turned 18. So वो पिछले season में 16 साल की थी. क्या क्या हो रहा था? मुझे इनका time skip कुछ भी समझ आ रहा है.
Police man उनसे ages उनकी पूछता है. तो वो इनसे एक साल ही छोटी थी नहीं?
नहीं, I think that they were bullshitting because Haya and Sameer were not of age. I think. तो वो जरा अपने आप को बड़ा दिखाना चाह रहे थे. I think that was the point of that scene because. उसके अंदर तो उम्मीद और समीर में 2 महीने का डिफरेंस था बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल तो या तो आई डोंट अंडरस्टैंड यू लुक इनका टाइम स्केल क्या चल रहा है बट आई एम एक्सेप्टिंग इट आई एम लाइक ठीक है सिली गुफी वाइब्स फनी ठीक है मैं उसको इतना सीरियस ही नहीं ले रही बट आई वांट देम टू काइंड ऑफ कि क्या चल रहा है बॉस
नहीं दे नीड टू बी अ बिट मोर एलैबोरेटिव ऑन दैट लेकिन आई डाउट देयर विल बी उसके अलावा आई थिंक ओवरऑल मुझे लगता है कि इट वॉज वेरी नाइस मैंने शायद सीजन 1 इतने गौर से देखा नहीं है और आज मुझे लगता है मैंने बहुत अटेंटिव होके देखा है क्योंकि रिव्यू करना था तो आई ट्वीटेड अ लॉट अबाउट इट तो इस मुझे लग रहा था कि और मुझे लगता है वो शो ऐसे द शो इज़ वेरी वेलकमिंग तो आप अगर आप उनको इतना फैन गेट नहीं भी करते ना यू स्टिल गो इनसेन ओवर देम
क्योंकि आई स्टार्टेड वॉचिंग इट Because of the staircase scene.
Achha, I love this that we got somewhat parallels from the previous season. Like there was this, the balcony scene. And everyone, like anyone who has watched this, like season 1, they know that the office staircase and the lift means so much. So much. It's so much. And all of the scenes are so cute.
the any romance enthusiast loves that place. So mere liye to it was like a very special place. So I this was one of the reasons why I liked, and I was hoping for an office trope. Varna uske alawa I don't like. Also another thing. Achha, I feel like main bahut zyada buraiyan kar rahi hu to but main already fangirl Twitter pe itna zyada kar chuki hu to idhar aake main buraiyan hi kar rahi hu. But this is like another thing that I wasn't really a fan of. Ke in season 1 Umeed had like a whole separate thing from Farjad going on. She was like apni ghar ke masle bhi the and everything, and I understand ki wo sab solve ho gaya. But I feel like at least in this episode, thodi si infantilization of Umeed there was ke uska character ko thoda sa water down kiya. I feel like sirf uski jo quirks hai unko rakha hai, baki ki personality was not as much there as I would have hoped. Which is also one of the reasons I did not want her to work for Farjad, because uski wo uski extension ban ke reh jati, uski apni hona. I would have preferred agar wo apna just ko jaye cafe kholne ka shauk tha ke wo woke. Which maybe she'll do it in the future. But yeah, so not really.
Haan, kyunki mujhe nahi lagta ki the office thing zyada der chalegi, kyunki jitne bhi office ke scenes teaser mein the wo to aaj sare episode mein lag gaye hain.
Jo baat hai. But also unhone abhi tak shoot hi pura nahi
kiya. To mujhe lagta hai ki shayad episode se wo bas ke tata bye.
मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि सॉरी काट रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जो अभी उसका प्रोमो आया है ना उसके अंदर, बिकॉज एपिसोड 1 वाज टू हैप्पी एंड ऑफ कोर्स उन्होंने आप ही तमाशा लगा दी है आगे प्लॉट आगे कैसे बढ़ेगा एंड एवरीथिंग हैज हैपेंड इन एपिसोड 1. आई फील लाइक देयर कुछ होगा ऐसा, एंड शी माइट लीव हिज ऑफिस, या वो लोग डिसाइड कर लेंगे. Matlab, the office dynamics are like thoda power dynamic thoda aisa ban raha hai ki maybe you shouldn't work together, and maybe it's not professional or something. I don't know, anything can happen. Either way, I'm really excited to know wherever they take it. Kahin bhi le jaye main bahut khush hungi. I main mujhe jitne cute office scenes mil gaye na, the one jiske andar literally skid hai mari hoti hai uski bhi office with that cute scene tha, please. And I love how he catches her, and then he's so gentle with her, and he turns around and he's like, "Umeed, kya kya?" But some companion, he tries to be like the old person, like he tries to reprimand her, but at the same time he can't do it. He's so soft and gentle with her. He's just, he's fridge hot. I love fridge hot. I cannot stress this, and I love. हाँ,
मुझे ये भी अच्छा लगता है कि हम ना वो जो office romance में बहुत देखते हैं, especially जब जो गाय है वो कंपनी का ओनर हो, कि वो एमी लड़की से रूड हो जाता है ऑफिस में. ऑफिस से बाहर ठीक होगा लेकिन ऑफिस में रूड हो जाता है जब वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट आता है. लेकिन फरजाद ने ऐसा नहीं किया, ही इज द सेम. वो फिर भी उसके साथ उतना ही जेंटल है, उतना ही है, और आई लव दैट, व्हिच इज व्हाई द कैरेक्टर इज अ वॉकिंग ग्रीन फ्लैग. एंड आई थिंक दैट हमजा एड सो मच टू द कैरेक्टर. मुझे लगता है ऑब्वियसली इट्स अ वेल रिटन कैरेक्टर, लेकिन हमजा ब्रिंग्स इन सो मच चार्म इनटू हिम, क्योंकि जब आप वो, और वो अट्रैक्टिव लगता है जब वो देख रहे होते हैं कि ही इज अ लूजर इन लव विद उमीद, तो आपको वो बंदा इतना अट्रैक्टिव लग रहा होता है, द वे ही लाफ्स, द वे ही ब्लशेस. तो मुझे लगता है ही ब्रिंग्स सो मच चार्म इन टू दैट कैरेक्टर, और उसके बाल बहुत अच्छे लग रहे होते
हैं. बाल तो सच में बहुत अच्छे लग रहे होते हैं. एवरीवन कीप्स सेइंग दैट. और सेरेन ने उसके इंटरव्यू में बोला था कि बाल में बहुत टाइम लगाता है.
मैंने सुना वो खुद करता है, सब कह रहे हैं कि ही मतलब वो खुद करता है, लेकिन आई रियली लाइक इट. मुझे लगता है कि ही, मुझे लगता है कि हमजा जेन्युइनली ब्रॉट अ चेंज, इज अबाउट टू या विल मेक अ चेंज इन द मेन लीड ऑफ पाकिस्तानी शोज. मैंने उसका दूसरा शो नहीं देखा, लेकिन मेरी मम्मा कह रही थी वो उस शो में भी बहुत अच्छा है.
कौन सा वाला?
जो उसका वो अनमोल के साथ है,
जियो का शो. आई एम नॉट वॉचिंग दैट शो बिकॉज़ एक तो उसके अंदर एक हरासर है लिटरली, एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड इन हमजा फॉर वर्किंग विद अ an alleged harasser. But yeah, but also it's a geo maine uske kuch edits the, yeah, mujhe uske ek do reels nazar aayi thi. I sent it to a friend and we laughed about it together. But it has a lot of cutesy scenes with Anmol apparently, so I am expecting some from Farjad and Umeed too.
So, but then, this is something I don't know if Hamza does it deliberately, ya wo characters aise pick karta, ya phir wo khud he brings that thing to the characters. But wo sach mein jitne bhi characters karta hai na, they are like, they're so charming. Minus the Rakib se wala character, wo to I love him for very separate reasons.
And Rakib se wala se minus, wo to bahut annoying tha.
Was a great actor, wow, Hamza, because you made me hate you. But uske alawa, you haven't watched Badshah Begum, but Badshah Begum, amazing. Hamza, have you watched uska scene jiske andar he literally dies?
Ha, maine wo scene dekha, itne logon ne Twitter pe
you watched
tha, to phir maine
dekha. So wo scene itna emotional hai. Aur kaun sa ek aur uska drama tha on air bhai that my friend told me about. I started watching it. I tried watching it because of Hamza. Main us time pe apne peak Hamza Sohail fan girl era mein thi, right after Ramzan ended, and I aur wo jo fairy tale withdrawals ho rahe the. Aur I started watching it, but that drama was so bad I could not handle it. But maine uske bhi Hamza ke kuch clips dekhe the from that drama, aur uske andar bhi apparently he was a green flag like through and through. So I love that for him ke he's I think, have you read that quote about Shah Rukh Khan, ke someone advised him to not waste his potential on action because he has something in his eyes, like he needs to do romance. I feel like that is very true for Hamza
as well.
That
makes so much sense.
Because he, Hera, it does, because Shah Rukh Khan pe to definitely, but also I feel like it's somewhat true for Hamza because he does the soft boy aesthetic very well.
Sure.
He's that gentle, romantic boy.
Yeah, he's definitely, mujhe lagta he's very good. He'll make you blush. Aap usko dekhte ho agar aapko sharam aa jayegi.
So I was actually properly giggling and kicking my feet up throughout, like pura drama dekhte hue. Aur main beech mein aadha time main niche dekh rahi, aadha time upar dekh rahi, so niche मैं बैठी हुई थी और अम्मा बाहर आई एंड अम्मा ने मुझे प्रॉपर जज किया कि तुम क्यों ऑब्सेस्ड विद दैट इस ड्रामा से. इट्स लाइक आई वोंट गेट इट, डिड आई लव इट.
सेम. ओके, डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू से?
डू आई हैव, नॉट रियली. मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने लिटरली रिकॉर्डिंग इस पार्ट की रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले रिबिया को बात है कि बहुत दुखी हूँ, तुम्हें ये सारी कॉन्वर्सेशन कैरी करनी पड़ेगी और अब मेरा मूवी नहीं बंद हो रहा. But yeah, that is what fairy tale does. But I don't think I have anything else to say, so we can end it here.
Thank you so much, guys, for listening to the episode. Make sure you guys are subscribing to the channel, ताकि आपको हर episode का notification आए, क्योंकि we would be reviewing fairy tale every week. और उसके साथ कुछ अगर आया तो कुछ और भी कर लेंगे, लेकिन we would be reviewing fairy tale. तो if you guys loved us talking about fairy tale, तो there is more for the future.
Also, let us know if you guys want us to do something else, review something else, or talk about anything else. But yeah, thank you so much for listening in. Bye.
Call me in.